Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurav Dhawanlal and with me is my co-anchor Amit Goyal.
नमस्कार मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक विकास दहिया. विकास, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
थैंक यू अमित जी. विशाल देसाई. थैंक यू गौरा.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा.
थैंक यू अमित एंड विशाल, वेलकम टू द प्रोग्राम. A quick look at the headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates and launches multiple development projects worth around 5,500 crore rupees for Mahakumbh 2025 in Uttar Pradesh today. Benchmark domestic equity indices end on strong note. Sensex surges 843 points. Nifty closes above 24,760. And crude oil prices edge up. Brent crude trades at $74.08.
आर्थिक सुर्खियों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश में 55 अरब रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया. घरेलू शेयर सूचकांकों में मजबूती का दौर. सेंसेक्स में 843 अंक का उछाल. निफ्टी 24,760 के ऊपर दर्ज. और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली बढ़त. ब्रेंट क्रूड $74.08 प्रति बैरल के आसपास दर्ज.
We begin with our headline story. Prime Minister Narendra Modi today said that Mahakumbh 2025 will be a Mahayagya of unity and equality and will guide the nation as along will be discussed all over the world. He was speaking at a public gathering in the Sangam area of Prayagraj after formally inaugurating the Mahakumbh 2025, which will officially start from the 13th of January next year and will continue till the 26th of February. On the occasion, Prime Minister Modi launched development projects worth around 5,500 crore rupees, which includes various rail and road projects to boost infrastructure and provide seamless connectivity in Prayagraj. The Prime Minister also inaugurated major temple corridors on the occasion, which include the Bharadwaj Ashram Corridor, the Shringvirpur Dham Corridor, the Akshayavat Corridor and the Hanuman Mandir Corridor, among others. He said that his government is working towards the enrichment of culture and heritage. In line with his commitment towards the Swachh and Nirmal Ganga project, the Prime Minister inaugurated projects of interception, tapping, diversion and treatment of minor drains leading into the river Ganga, which will ensure zero discharge of untreated water into the river. Prime Minister Modi also launched the Kumbh Sahayak AI chat box, which will provide details to give guidance and updates on the events to devotees on the Mahakumbh Mela 2025. He said that this Kumbh will be remembered for the Sangam of technology and artificial intelligence. Vishal, when we look at this devolution of the 5,500 crore rupees project and the Prime Minister's, I think, focus on development projects, job creation, your views on how this will impact the area?
Well, you know, every big event, Gaura, brings with it a lot of impetus by the government on infrastructure. And then infrastructure ultimately ends up helping the people of that particular area, not only by providing them, you know, infra facilities, but also by giving them opportunities to go ahead and, you know, further develop their own entrepreneurship, their own businesses as well. So Mahakumbh, as all of us are aware, is a huge religious event, a big one. And therein, there'll be, you know, thousands of people will be involved in various business or various entrepreneurship, be shopkeepers, boatmen, or, you know, several other workmen as well. These kind of infrastructure projects do give sort of a new look to the area. Also, in the long run, it's just not about the short term. The Mahakumbh will come to an end in 45-50 days. you know, the euphoria around the Mahakumbh will die down, but the infrastructure projects, the rail projects, the road projects will continue to be there to serve the people of that particular area. Also, very interesting part here from the Prime Minister's address is the use of artificial intelligence. That is again very important, because now we are moving a step further in terms of utilizing technology at larger scale. Employing the artificial intelligence at this larger level, and when the chatbot I was reading about, this AI chatbot, it'll be delivering responses in 11 Indian languages, and there'll be a confluence of technology, of course religion, because it's Mahakumbh, but also a confluence of technology and business and entrepreneurship as well, because ultimately, as all of us are aware, artificial intelligence is the next barrier in technological developments, where we are moving forward very quickly. So adoption of these technologies at such a larger level do speak about our progress in this area.
विकास, दो चीजें आपने बात भी करी कि प्रधानमंत्री ने ये जो एक धार्मिक अवसर या आध्यात्मिक अवसर है उसके साथ साथ उसकी सुविधाओं को जुटाने में जो बहुत होशियारी के साथ उन्होंने इसमें तकनीक का भी समावेश कर दिया, जिससे लोगों को सहूलियत हो, जिससे इस तरह के बड़े आयोजन में अगर कहीं कुछ असुविधाएं होती हैं उसको दूर करने का एक बहुत बेहतर प्रयास किया है, दूर तक सोच, साथ ही साथ आर्थिक सशक्तिकरण वह उस क्षेत्र में आपने भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें तो स्वाभाविक तौर पर ही वहाँ पे बढ़ जाती हैं, चाहे वो रेल से संबंधित हो, चाहे सड़क से संबंधित हो, लेकिन जो वहाँ के छोटे दुकानदार हैं या वहाँ पे जो सुविधाएं देने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद अपने घरों में लोगों को ठहराने की बात करते हैं, छोटे होटल हैं या बड़े होटल हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है। क्या इससे हमें ये मानना चाहिए कि वहाँ पे इस तरीके की सुविधाओं का और विस्तार होगा, जो लंबे समय तक इस तरीके की सुविधाएं वहाँ पे देने में सक्षम हो पकेंगे और पूरा शहर अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज जो है वो अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है, निषाद राज की नगरी कहा जाता है उसे, तो संगम है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, यानी कि जैसे हम टूरिस्ट का आकर्षण जिसे बोलते हैं, पर्यटकों के लिए एक बड़ी आकर्षण जगह है। अब पर्यटन कई तरीके का होता है, या हम धार्मिक पर्यटन की भी बात कर रहे हैं और आध्यात्मिक पर्यटन की भी बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसे इलाकों पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाओं का जो ढांचा है उसको और बेहतर किया जाए, तो उसका फायदा ना केवल वो लोग जो कि वहां जाना चाहते हैं उनको मिलेगा, बल्कि वहां उस इलाके में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा और उन लोगों को एक और मौका मिलेगा, जैसा कि मैं गौरा को कह रहा था थोड़ी देर पहले, कि अपनी जो प्रतिभा है उसका इस्तेमाल कर सकें, वहीं बैठे बैठे एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे कुछ नई चीज़ ईजाद कर सकें, कुछ अपने इलाके में रहकर कुछ नया बिजनेस डेवलप कर सकें, और जब वो ऐसा करेंगे तो वो जो लोकल इकोनॉमी है वो एक सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी, यानी कि पैसा वहाँ जनरेट होगा, वहीं पर खर्च होगा, और मूलभूत सुविधाएँ देना सरकार का काम है, तो सरकार अगर मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करवा रही है, वहाँ पहुँचा रही है, चाहे वो रेलवे लाइन की में हो, चाहे वो सड़क के चलते हो, या फिर अस्पताल, स्कूल, इनकी हम बात करें, तो इन सब मूलभूत सुविधाओं के ढांचे का अंततः फायदा जो है जो वहां लोग रह रहे हैं उनको मिलना है, और मेरे और आपके जैसे लोग जो आध्यात्मिक पर्यटन या फिर धार्मिक पर्यटन के लिए वहां जाएंगे उनको भी मिलेगा, और इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा।
जी जी बिल्कुल, चलिए इस खबर के बाद नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मजबूती रही, बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1% की बढ़त से 843 अंक उछलकर 82,133 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.9% की मजबूती से 220 अंक बढ़कर 24,768 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप में 0.3% की गिरावट भी नजर आई।
Benchmark domestic equity indices today ended on a strong note. The 30-share BSE Sensex surged 843 points, or 1.04%, to close at 82,133, and the NSE Nifty 50 rose to 20 points, or 0.89%, to end at 24,768. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange underperformed the equity market. The mid-cap index ended marginally down by 0.08% and the small-cap index shed around 0.3%. In the Sensex index, 26 out of 30 companies ended with gains. Among the top gainers, Bharti Airtel surged over 4.3%. ITC as well as Kotak Mahindra Bank both climbed over 2% each, and Hindustan Unilever rose over 1.9%. Conversely, in the top laggards, Tata Steel fell over 1.2%, IndusInd Bank lost over 1%, and JSW Steel dropped more than 0.5%. In sectoral indices at the BSE, 14 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, telecommunication jumped over 2%, tech rose more than 1.3%, and consumer durables added over 1%. Meanwhile, in the top laggards, metal dipped over 0.7%, realty shed 0.4%, and healthcare lost over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 1,818 companies advanced and 2,173 declined, while 114 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 83 companies hit their 52-week high, while 18 hit their 52-week low.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 7 पैसे बढ़कर 84 रुपये 79 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स 106.9 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. विशाल, किस तरह से देखेंगे शेयर बाजार से अच्छी खबर बहुत दिनों के बाद, लेकिन क्या, लेकिन अगर जैसा कि गौरा ने बताया कि ओवरऑल मार्केट ब्रेथ वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता से बाहर नहीं आ पाई, अगर 1800 कंपनियों के शेयर अगर बढ़े हैं तो वहीं तकरीबन 2200 कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी दर्ज हुई है, कितनी स्थायी मानते हैं ये जो बढ़त है?
देखिए अमित जी, आपने ओवरऑल मार्केट ब्रेथ की जब बात की तो आपने कंपनियों की बात की कि कितनी कंपनियां नेगेटिव में हैं, कितनी कंपनियां पॉजिटिव में हैं. तो मेरा मानना ये है कि इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो गिलास आधा भरा है या गिलास आधा खाली है. अब मैं इसे गिलास आधा भरा ही की तरह क्यों देखना चाहता हूँ, उसके पीछे कारण है, क्योंकि आज केवल आज ही की बात करते हैं और हिस्टोरिकल एम्पिरिकल एविडेंस जिसे हम कहते हैं, वो जो डेटा एविडेंस जो है उसको भी हम नज़र डाल सकते हैं. लेकिन अगर केवल आज की बात करें तो आप देखिए, आज जब शुरुआत हुई तो शुरुआती दो घंटे तीन घंटे में ही लगभग 1100 अंकों की गिरावट दर्ज हुई
जी.
और फिर उसके बाद जब दिन खत्म हुआ तो खत्म होते होते लगभग 700 अंकों की बढ़त के साथ दिन खत्म हुआ, यानी कि लगभग 1800 अंक इधर से उधर मार्केट आज पूरे दिन में रहा है
जी.
इसे एक रोलर कोस्टर राइड कहा जा सकता है, जैसे हम मेले में देखते हैं कि कभी ऊपर गए कभी नीचे गए. अब बहुत महत्वपूर्ण देखने लायक यहां यह है कि कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इसे ड्राइव कर रहे हैं. जब नीचे जा रहा था तो जो सेक्टर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहे थे उसके मुकाबले जब ऊपर गया और दिन जब समाप्त हुआ तो उसमें बहुत अंतर है. जब दिन समाप्त हुआ तो FMCG और IT सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियां थी, और खासतौर पे अलग सेक्टर वाइज ही अगर देखें तो FMCG और IT सेक्टर एक जिसे कहा जाए कि बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका रहा इस पूरे आज की जो स्टॉक मार्केट की जो कार्रवाई रही. अब गिलास आधा खाली भी हो सकता है जैसा कि आप कह रहे थे, तो वो आधा खाली इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि आप ओवरऑल मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं. लेकिन ये भी ध्यान रखना यह जरूरी है, मैं हिस्टोरिकल डेटा की तरफ जाऊं तो कि मार्केट पिछले कुछ हफ्तों से, बल्कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से उसका बिहेवियर है, मैं उसे रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहूंगा, यानी कि मार्केट इज रिस्पोंडिंग टू द स्टिमुलस. कोई डोमेस्टिक का इंडिकेशन हो, कोई इंटरनेशनल इंडिकेशन हो, तो वो एक इंडिकेशन आती है और उससे मार्केट रिस्पॉन्ड करता है. उस इंडिकेशन का जो पॉइंट है उसे अगर थोड़ा सा अगर हम एक बार किनारे रख दें और फिर मार्केट की तरफ नजर डाल के देखें तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर तो सब ठीक ठाक चल रहा है. क्योंकि देखिए, FIIs ने आज बहुत ज़्यादा बिकवाली की, प्रेशर रहा, उसका प्रेशर जो है रुपी के ऊपर भी हमें देखने को मिला. लेकिन ये तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के DNA में है कि उन्हें जब जब कोई मुनाफा होता दिखेगा तो वो बिकवाली करके बाहर जाएंगे मार्केट से. और DIIs जो है एक कुशन की तरह जो काम कर रहे हैं पिछले लगभग कई महीनों से, तो उससे इसीलिए मैंने कहा कि इन सब चीज़ों को एक साथ जब आप आकलन करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि गिलास वाकई में आधा भरा है, खाली नहीं.
I think also somewhere what you're saying, Vishal, that we have always said that, you know, FIIs have influenced the market, but DIIs are now, over the past few months and years, particularly a few years, have been playing a stronger role slowly, with retail investors also pitching in. And I think somewhere when the market used to actually fall due to an FII profit booking, then it took a day or so for that market to make up. And here we are seeing that the resilience of the market is increasing. And that's a good, strong sign for us?
Well, indeed, because the DII cushion is becoming more stronger with each passing day. Now, that's a very good, strong sign for us. As far as FII is concerned, FIIs will continue to be a very important factor in the stock markets, because ultimately, they're an indicator of how the foreign investors are looking at various companies, overall Indian economy, overall Indian stock market index as well. So clearly, the FIIs will continue to play a very important role. But as a cushioning factor, as a countermeasure, the DII, as you were pointing out, the DIIs, the domestic investors, are now becoming more prominent. They're playing a larger prominent role as well. So that is why we see that every time there is a negative movement, perhaps the DIIs might have missed the mile by some percentage points. But in most of the situations where we see either market ending flat or market ending slightly up or slightly down, then you look at deeper into the data and we'll find out that the FII DII calculation is almost equal. It's not too much of a difference,
right?
And that shows us that the faith of the domestic investors and the retail investors as well in the market has grown substantially over a period of time, and it is now I might be called a bit of a too much of an optimistic here, but I would say it has now matured. Some economists might say that we are yet to achieve that maturity level when it comes to the domestic investors or retail investors. I would say yes, we have matured almost in the first stage of maturity with there.
Right, so the maturity graph is upwards. Could be slow, but is upwards, definitely.
Yes.
So while on the topic of FIIs, the Fed meeting is going to happen, and how do you think the FIIs are likely to respond? Because I think somewhere, even for retail investors to know, and somewhere time it accordingly, or try and see that how will that help actually or hinder retail investors here?
Well, in terms of the FIIs and the factors, influencing them, it's very important to note, Gaura, that it's just not about what the Fed is going to say. Of course, that's a very important aspect, and that drives not only the Indian markets but the global markets and the foreign investors in various global markets,
right,
as well. But also some domestic factors internally, as far as India is concerned. For example, the health of a particular sector where the FII would have invested, the kind of policies which are there, because the FII is usually I consider them as an investor who come into the market with a long-term mindset but are ready to jump out with the first initial signs of any trouble towards their investment. That is why whenever we see some sort of movement happening, radical movement happening in the market, some volatility happening in the market, the FIIs are the first one to pull out.
Is today an example?
Well, today, I would say partially is an example. It has nothing to do with the policies or anything like that, but some data set. For example, the job data, which has come in from the United States, that might be a contributing factor. Then for the Indian markets, the contributing factor is the inflation data. For example, the inflation figure for the latest inflation figure is somewhere around 5.5%. It is much less than what it was last time. That is around 6.4%. It is also within the range bound of, RBI, the Reserve Bank of India. But the food price inflation is something which is a cause of concern, a cause of worry as well, and something which the RBI has also pointed out. Also, very interesting to note here is that something which I've been pointing out in previous shows also is the evaluation. The FIIs seemingly are a bit concerned about a bit of an over-evaluation still prevailing in the market. There has been a lot of correction which has happened, but perhaps there is still a bit of an elbow room as far as dealing with the over-evaluation is concerned. And then let's not forget, for the foreign investors, India or Indian markets are just one investing place. They have other prominent markets as well to invest. So if they're getting say perhaps 2% more than 2% profit more than what they're getting in Indian markets, they would definitely want to move. But this does not mean that they don't come back. This is a circular movement. Today, if an X amount of money is moved out by the FIIs from the Indian markets, tomorrow we might see X plus one amount of money coming back in the Indian markets from the FIIs.
Vishal, इस सारी खबरों के बीच में एक छोटे से आंकड़े भी मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि आज का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के जो आंकड़े हैं उसमें वो शायद नेट में वो बिकवाली उन्होंने करी है और जो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज हैं उन्होंने नेट में खरीदारी करी है. ये एनएसई के जो आंकड़े हैं वो मैं कोट कर रहा हूं. तो आपने जो लास्ट में सेंटेंस कहा कि कहीं ना कहीं विदेशी संस्थागत निवेशक अगर आज बिकवाली कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो बढ़कर वापस
वो कल बढ़कर वापस आएगा क्योंकि उसे अगर बेहतरीन मौका दिखाई देगा तो वो दोबारा इन्वेस्ट करने आएगा.
मौके तो भारत में निश्चित तौर पे
मौकों की कमी नहीं है.
इसके साथ साथ कुछ चीजों पे मैं कौन से वो सेक्टर हैं जो अभी एक आम निवेशक के लिए मौकों की भरमार लिए बैठे हैं अगर उनके बारे में कुछ जानकारी दे पाए.
देखिए जो फेस्टिवल सीजन जिसे कहा जाता है त्योहार का सीजन जिसे कहा जाता है वो अभी भी चल ही रहा है.
सिर्फ वैवाहिक सीजन चल रहे हैं और थोड़े से
अब त्यौहार इसलिए माना जाता है क्योंकि अब भारतीय त्यौहार जरूर मतलब वो जो त्यौहारों का सीजन है दिवाली के साथ जो है मतलब वो समाप्ति उसकी हो गई हो लेकिन उसके बाद एक न्यू ईयर जैसे माना जाता है. मैं त्यौहारों के सीजन की तरफ इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि आपने सेक्टर की बात की और मैं सेक्टर में एफएमसीजी और ऑटो की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं. ऑटो सेक्टर बहुत ही जिसे कहा जाए कि तकलीफ में था लेकिन जो त्योहारों का सीजन आया उसमें ऑटो सेक्टर को बहुत राहत मिली,
संजीवनी मिली
और अब उम्मीद ऑटो सेक्टर की तरफ से ये है कि ये जो एक्सटेंडेड फेस्टिवल सीजन जिसे कहा जा सकता है नए साल तक यानी कि 1 जनवरी तक या 5 जनवरी तक जिसे कहा जा सकता है उसमें शायद वो थोड़ी सी उस संजीवनी बूटी का एक घूंट और जो है जबरदस्त ले ले. उसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर की अगर बात करें तो वहां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखिए एफएमसीजी सेक्टर में कई सारी कंपनियों ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों को रिवाइज भी किया है. तो वो रिवीजन करना वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है उन कंपनियों का कि यानी कि उनको लगता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिकवाली बढ़ेगी
और उनकी बैलेंस शीट भी
और उनकी बैलेंस शीट भी बढ़ेगी.
चलिए नजर डाल लेते हैं मुद्रा भंडार पर. 6 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब 23 करोड़ डॉलर घटकर 654 अरब 86 करोड़ डॉलर के स्तर पर रहा. इससे पिछले सप्ताह मुद्रा भंडार 658 अरब 9 करोड़ डॉलर के स्तर पर था. रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 3 अरब 22 करोड़ डॉलर घटकर 565 अरब 62 करोड़ डॉलर के स्तर पर रह गई. स्वर्ण भंडार 4 करोड़ 30 लाख डॉलर की गिरावट से 66 अरब 94 करोड़ डॉलर के स्तर पर रह गया.
We have a story on the India-Philippines dialogue. The inaugural India-Philippines Maritime Dialogue was held in Manila, Philippines today. During the dialogue, the two sides exchanged perspectives on prevailing maritime challenges and discussed ways to enhance maritime cooperation in furthering a conducive environment for mutual growth and global well-being. They laid emphasis on adherence to a rules-based order, especially the UN Convention on the Law of the Sea, and explored cooperation initiatives in the maritime domain to uphold the same. While endeavoring to increase bilateral engagement, the two sides also deliberated on avenues to collaborate at various international and regional fora for shared objectives. They agreed to share best practices and partner in maritime capacity building initiatives in areas such as the maritime industry, marine scientific research and other areas.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश के परिवहन ढांचे में असाधारण वृद्धि हुई है. नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 के 91,287 किलोमीटर के मुकाबले 1.5 गुना बढ़कर इस वर्ष नवम्बर तक 146,195 किलोमीटर हो गया है. श्री चौधरी ने कहा कि हवाई अड्डों की संख्या भी वर्ष 2014 के 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 158 हवाई अड्डे हो गई है. श्री चौधरी ने रेलवे की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि 97% रेल मार्ग भी विद्युतीकृत हो गए हैं. ये सारी जो खबरें बताती हैं कि हमारा जो एक बुनियादी ढांचा है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है और शायद इसकी वजह से ही रोजगार के सृजन में भी हमें एक अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही होगी.
जी बिल्कुल. देखिए सड़कों का जाल बिछता है तो सबसे पहले फायदा जैसे कि मैं पहले कह रहा था वहां के लोगों को होता है और दूसरा फायदा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसे कहा जाए उसमें होता है, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी होगी तो नए नए उद्योग लगेंगे और नए नए उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो वहां के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनको जीविका का साधन मिलेगा और अगर वो पैसा कमाएंगे तो वो पैसा फिर बाजार में जाके खर्च करेंगे और वो जो बाजार में जाके वो खर्च करेंगे तो वो फिर जो है वापस से दोबारा देश की इकोनॉमी में उस पैसे का योगदान होगा। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी है और इसकी शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होती है। सड़क उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक जैसे कहा जाए उसका एक योगदान है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो उनका भी और रेलवे हो उनका भी, कनेक्टिविटी जिसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा स्कूल अस्पताल ये सब फिर जैसे कहा जाए सब्सिडरी जरूर कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसे भी मेन मूलभूत जो ढांचा है इंफ्रास्ट्रक्चर का उसका हिस्सा मानता हूं, लेकिन शुरुआत कनेक्टिविटी से ही होती है।
राइट, we look at the US markets. US stocks ended lower yesterday as investors assessed key economic indicators ahead of the Federal Reserve's meeting next week. The Nasdaq composite dipped over 0.6% and the S&P 500 as well as the Dow Jones Industrial Average shed over 0.5% each. Earlier data showed that initial jobless claims rose unexpectedly for the week ended on December 7th, raising concerns about labor market resilience. The Labor Department report showed November producer price readings released at the same time were mixed, while US wholesale inflation accelerating in November due to a surge in egg prices. Well, before you come in, Amit, just a quick question on, joblessness and joblessness claims. Do you see this as a serious concern for the US?
Well, it is indeed a serious concern, but perhaps in the short term, they might not be too much worried about it. Perhaps the policymakers in the United States should be looking forward to, and perhaps they might be working on that as well in terms of its impacts in the long term, because there are a lot of policy changes which are going to happen with the new administration taking charge in January 2025. And what kind of those changes would be and what kind of impact those changes would have on the labor market, on the job market in the United States is something which is going to be really
important. Right. अधिक की गिरावट रही। जापान का निके भी लगभग 1% के नुकसान से बंद हुआ, हालांकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 0.5% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक भी लगभग पूरी स्तर पर बना रहा। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती नजर आई। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.2% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
ऑयल प्राइसेस एज्ड अप टुडे हेडिंग फॉर देयर फर्स्ट वीकली राइज सिंस द एंड ऑफ नवंबर अमिड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड एज अ सरप्लस आउटलुक वेड ऑन द मार्केट्स। ब्रेंट क्रूड वाज trading 0.91% up at $74.08 per barrel, while WTI crude gained nearly 1% to trade at $70.69 per barrel, according to the latest reports.
Sarafa bazaar mein sona aaj giravat se 0.6% ghatkar 77590 rupaye prati 10 gram ke star pe raha, jabki chandi 0.8% ke nuksan se 91770 rupaye prati kilogram ke star par darj hui, aur vaishvik bazaron mein sona lagbhag $2690 prati ounce ke star pe, jabki chandi $31.20 के आसपास दर्ज हुई। सोने और चांदी में अभी कितनी चमक है शायद समय की बात है, फिर भी बहुत संक्षेप में अगर आप बता सके सोना भारतीयों की कमजोरी भी रही है।
देखिए सोना केवल भारतीयों की कमजोरी नहीं अमित जी, सोना पूरे विश्व में सबकी कमजोरी है।
आजकल तो
चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सरकार हो या फिर सेंट्रल बैंक हो, और एक हेज इंस्ट्रूमेंट कमजोरी का कारण हर जगह बनता ही बनता है।
जी विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। आपने इतने सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बहुत सारी चीजें बताई और खासतौर पे शेयर बाजार से जुड़े वो सेक्टर्स पे भी ध्यान देने को कहा, शायद जहां से अच्छी खबरें और उत्साहजनक खबरें फिर से उनको और मिल सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे सभी श्रोता इस बात पे खासतौर पे गौर करेंगे और निरंतर और लगातार निवेशित बने रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद अमित जी।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
Right, absolutely. And Amit, what better golden note than to end the program? I think the last item always raises hope, spirits, and of course the sheen. Before we close, a quick look at the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates and launches multiple development projects worth around 5,500 crore rupees for Mahakumbh 2025 in Uttar Pradesh today. Benchmark domestic equity indices end on strong note. Sensex surges 843 points. Nifty closes above 24,760. And crude oil prices edge up. Brent crude trades at $74.08. That's it for today. Namaskar.
Market Hunt Run.